भूमिका। साहित्य में नाटक का स्थान बहुत उच्च माना गया है। सामान्यतः काव्य के दो भेद माने गए हैं, दृश्य और श्रव्य। जिसका अभिनय से प्रदर्शन किया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं और जिसका श्रवण मात्र किया जाता है, अभिनय नहीं, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। गद्य, पद्य और मिश्र, इस प्रकार श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हैं। अप्रस्तुत होने से हम यहाँ श्रव्य काव्य के अवान्तर भेदों का वर्णन न कर दृश्य काव्य के भेदों का वर्णन करते हैं। दुष्यंत आदि व्यक्तियों के रूप का परिग्रह किए जाने से दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं। दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 भेद होते हैं, जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन। उपरूपक के 18 भेद होते हैं, जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, कट्टक, नाट्य, रासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश और भाणिका। इनमें खास खास अपने लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षण नाटक के ही समान होते हैं। दृश्य और श्रव्य दोनों काव्यों में कवि अपनी अद्भुत रचना कुशलता से लोकोत्तर प्रतिष्ठा का भागी हो सकता है, परंतु दृश्य काव्य अभिनय और श्रवणीय भी होने से दर्शकों के हृदय को आवर्जित करने में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। अतएव कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम और नाटकांतम कवित्वम, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय है और कवित्व की सीमा नाटक में ही रहती है। महाकवि कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक से ही विश्व विश्रुत हुए और इंग्लैंड का कविवर शेक्सपियर अपने हेमलेट नाटक से ही लोकोत्तर प्रतिष्ठा का भाजन हुआ है। नाटक की उत्पत्ति और उद्देश्य के विषय में महामुनि भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है, उत्तमा अधमम मध्यानाम नराणाम कर्म संशयम हितोपदेश जननम धृति क्रीड़ा सुखादिकृत 1.114। दुखार्ता नाम समर्था नाम शोकार्ता नाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्य मेतन मया कृतम 1.115। अर्थात समय में उत्तम, मध्यम और अधम जनों के कर्म को लेकर हित के उपदेश को प्रकट करने वाला तथा धैर्य, क्रीड़ा और सुख आदि को करने वाला, दुख से पीड़ितों को, समर्थों को और शोक से पीड़ितों को तथा तपस्वियों को व शोचनीय जनों को विश्राम देने वाला, ऐसा नाट्य मैंने बनाया है। इसी के लिए उन्होंने जग्राह पाठ्य मृगवेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान प्रसानार्थ वर्णादपि 1.17। अर्थात ऋग्वेद से पाठ्य अंश, साम मंत्रों से गीत, यजुर्वेद से अभिनयों को और अथर्ववेद से रसों को लेकर पंचम वेद नाट्य की रचना की। यह सार्ववर्णिक है, इसमें स्त्री और शूद्र का भी अधिकार है। नाट्य के महत्व के विषय में वे ही कहते हैं, न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत् कर्म नाटके यन्न दृश्यते नाट्यशास्त्र 1.113। अर्थात न वह ज्ञान, न वह शिल्प क्रिया कौशल, न वह विद्या, न वह कला, न वह योग और न तो वह कर्म है जो कि नाटक में नहीं देखा जाता है। महावैयाकरण पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी में शिलाली और कृशाश्व के नट सूत्रों का उल्लेख है। पाराशर्य शिलालिम्याम भिक्षु नट सूत्रयो 4.3.110 कर्मंद कृशाश्वादिनी 4.3.111। इसी तरह महाभाष्य में बलिबंध और कंसवध नाटक का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में प्रयुक्त व्यामश्रिक शब्द संस्कृत और प्राकृत भाषा में मिश्रित नाटक का वाचक है। भारत में मांगलिक कार्य में रूपक का अभिनय होता था, जैसे कि महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य में परिणय संस्कार के अनंतर पार्वती और परमेश्वर के अप्सराओं से अभिनीत रूपक को देखने का वर्णन किया है। तो संधिषु व्यंजित वृत्ति भेदम रसांतरेषु प्रतिबद्ध रागम अपश्यताम अप्सरसाम मुहूर्तम प्रयोग माध्यम ललितांगहारम। इसी तरह महाकवि कालिदास अपने मालविका अग्निमित्र नाटक के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। देवानामिदम् आमनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरं स्वांगे दिभक्तं दिधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचिर्जनस्य बहुधा तेकं समाराधनम् 1.4। अर्थात मुनियों ने इसे देवताओं का शांत हिंसा रहित चाक्षुष यज्ञ बतलाया है। महादेव ने इसके लिए पार्वती से संप्रुक्त अपने शरीर में तांडव और लास्य के रूप में दो प्रकारों का नृत्य विभक्त किया है। इस नाटक में सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से उत्पन्न अनेक रसों वाला लोक चरित्र देखा जाता है। भिन्न रुचि वाले जनों का एक नाटक ही अनेक प्रकार से आराधन करने वाला है। कवि निबद्ध वक्ता गणदास के रूप में महाकवि कालिदास ने इस उक्ति का प्रदर्शन किया है। कहना नहीं पड़ेगा कि यह उक्ति भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र स्थित नाटकीय उपयोगिता का संक्षिप्तीकरण है। यह तो हुआ नाटक की उत्पत्ति और उद्देश्य के विषय में भारतीय अभिमत। पाश्चात्य विद्वानों में नाटक की उत्पत्ति के विषय में बहुत मतभेद दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर रिजवे के मत में भारत में ही क्या सर्वत्र मृत व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा से रूपक की उत्पत्ति हुई है। किसी के मत में इंद्रध्वज आदि पर्वत के उत्सव से एवं राम और कृष्ण की लीला से, ऋतु के परिवर्तन से तथा डॉक्टर पिशेल के मत में कठपुतली के नृत्य से, छाया नाटक से, तो कोई मनचले विद्वान ग्रीस देश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। जर्मनी के विद्वानों ने वेद के संवाद सूक्तों से रूपक की उत्पत्ति मानी है, जो किसी अंश में सत्य प्रतीत होती है। जो हो, नाटक की महत्ता के विषय में सब विद्वानों का एक मत है। नाटक में एक ही रस प्रधान होता है, श्रृंगार व वीर, अन्य रस अंग रूप में रहते हैं। संस्कृत साहित्य में मुद्रा राक्षस का अप्रतिम स्थान है। क्या स्वदेशी क्या विदेशी, सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार के अनुसार मुक्त कंठ होकर इसकी सराहना की है। मुद्रा राक्षस के रचयिता महाविद्वान विशाख दत्त व विशाख देव हैं। इनकी उक्ति के अनुसार ये सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराज भास्कर दत्त के पुत्र थे। विशाख दत्त के पितामह बटेश्वर दत्त कहाँ के सामंत थे और इनके पिता भास्कर दत्त कहाँ के महाराज थे और इनका जन्म स्थान और कर्म स्थान कहाँ था, यह सब विषय अज्ञात और अनिर्णित है। अलबत्ता नाटक के अंत में विद्यमान एक पद्य के आधार पर विद्वानों ने उपपत्ति दिखाकर इनके समय की कल्पना की है। भरत वाक्य के रूप में उक्त पद्य इस प्रकार का है। वाराही मात्म योनेस्त नुमवन विधावा संस्थित तस्यानुरूपं यस्य प्राग्दंत कोटिम प्रलय परिगता श्री श्रीये भूतधात्री नेच्छै रुद्विज्यमाना भुज युग मधुना संश्रिता राजमूर्ते स श्रीमद्वंधु भृत्यश्चिरमवतु महीम पार्थिवश्चंद्रगुप्तः 7:19। इसका सार: प्रलय समय में पृथ्वी ने भगवान वराह देव की दंत कोटि का आश्रय लिया था। अभी म्लेच्छों से उद्विग्न होती हुई वह पृथ्वी जिस राजमूर्ति चंद्रगुप्त के बाहुद्वय में आश्रित है, संपन्न बंधु वृत्तियों वाले वे पृथ्वीश्वर चंद्रगुप्त पृथ्वी की चिरकाल तक रक्षा करें। इस पद्य में चरम चरण में विद्यमान पार्थिवश चंद्रगुप्त, यहाँ पर पार्थिवो अवंती वर्मा, पार्थिवो रंती वर्मा व पार्थिवो दंती वर्मा, ऐसे पाठ लिखित पुस्तकों में मिलते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। इनमें चंद्रगुप्त के स्थान में रंती वर्मा, इस पाठ में रंती वर्मा नाम के राजा अज्ञात हैं, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। दंती वर्मा ऐसा पाठ माने तो ख्री 789-830 में उद्भूत पल्लव राज्य के पालनकर्ता दंती वर्मा थे, पर उन्होंने म्लेच्छों को निर्वासित किया था, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। अवंती वर्मा ऐसा पाठ स्वीकृत हो तो थाणवीश्वर के राजा हर्षवर्धन की बहिन राजश्री के ससुर मौखरी वंश के राजा अवंती वर्मा प्रतीत होते हैं। म्लेच्छ पद से हूणों का उल्लेख समझना चाहिए, जिन्हें अवंती वर्मा ने प्रभाकर वर्धन की सहायता से परास्त किया था। यह घटना 582 ख्रीष्टाब्द के आसपास की है। तब तो मुद्रा राक्षस की रचना 6 शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई ऐसा मानना पड़ता है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल चंद्रगुप्त कहने से द्वितीय विक्रमादित्य को ही मानते हैं। तब तो इस ग्रंथ की रचना ईस्वी 400 के आसपास माननी चाहिए, परंतु यह मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि म्लेच्छों को द्वितीय चंद्रगुप्त ने परास्त किया था, इसका कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज पंडित के अनुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त ही है, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से भारतवर्ष का शासन किया था और यूनानी सिल्यूकस को परास्त किया था। म्लेच्छ पद से वही सिल्यूकस प्रतीत होता है, परंतु आधुनिक विद्वानों का कहना है कि भरत वाक्य का चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के लिए नहीं है, क्योंकि वह इस नाटक का नायक है। मुद्रा राक्षस के पद्यों का उद्धरण धनिक का दशरूप का अवलोक, नाट्य दर्पण और भोज के सरस्वती कंठाभरण में भी मिलता है। विशाख दत्त न्यायशास्त्र, नाट्यशास्त्र, ज्योतिष, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रवीण विद्वान थे। उन्होंने निम्नस्थ पद्य में न्यायशास्त्र के पारिभाषिक पदों का प्रयोग कर राजनीति तथा न्यायशास्त्र में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साध्वे निश्चित मन वयेन घटितम विभ्रत स्वपक्षे स्थितिम व्यावृत्तं च विपक्षतो भवति यत् तत् साधनं सिद्वये यत् साध्यं सममेव तुल्यमुभयो पक्षे विरुद्धं च यत् तस्यांगीकरणेन वादिन इव स्यात् स्वामिनो निग्रह। 1.5.10। इसी प्रकार नीचे के पद्य में विशाख दत्त ने राजनीति प्रयोजक और नाटक लेखक के सादृश्य प्रदर्शन में किस तरह अपनी रचना निपुणता दिखाई है, जैसे कि कार्योपक्षेप मादौ तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन् बीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं गूढमुद्भेदयंश्च कुर्वन् बुद्ध्या विमर्शं प्रसितमपि पुनः संहरन् कार्यजातं कर्ता वा नाटकानि मनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा। 4.3। वे शैव थे पर बौद्ध धर्म में भी उनकी कुछ आस्था थी, परंतु जैन धर्म उनको पसंद नहीं था, यह बात उनकी रचना से ज्ञात होती है। विशाख दत्त ने और भी दो नाटक लिखे हैं, देवी चंद्रगुप्त और अभिसारिका वंचितक व अभिसारिका बंधितक। ये दोनों अभी उपलब्ध नहीं हैं। पिछले नाटक में उदयन वासव दत्त और पद्मावती मुख्य पात्र हैं। देवी चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त पद से विशाख दत्त गुप्त राजाओं के दरबार में राजकवि थे, ऐसी संभावना की जाती है। यह सत्य हो तो उनका समय ख्रीष्टाब्द सन 320 के लगभग था, ऐसा सिद्ध होता है। इनके कुछ फुटकर पद्य सूक्ति संग्रह में संकलित मिलते हैं। मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं। यह वीर रस प्रधान ऐतिहासिक नाटक है, इसमें पद्यों की बहुलता भी नहीं है। इसकी प्राकृत भाषा सौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी है। संस्कृत के उत्कृष्ट नाटकों में यह बहुचर्चित और प्रमुख नाटक है। इसकी रचना में अद्भुत चतुरतापूर्ण गंभीरता है। इसकी प्रस्तावना में ही आह क एष मयि स्थिते चंद्रगुप्तम अभिभवतु मिच्छति बलात् इस वाक्य में पराक्रम का अभिव्यंजन किया गया है। नांदी का आरंभ करके कवि ने जैसी शब्द विन्यास की सार्थकता और रचना पटुता दर्शाई है वह अत्यंत मनोहर है। जैसे कि धन्य केयम स्थिता के शिरसि शशिकला किम नु नामय तदस्या इत्यादि और पादस्या वीर भवंती मवने रक्षतः चैर पात है इत्यादि से कोपानल से नंदकुल के समान राक्षस के साथ ही मलय केतु को भी प्रज्वलित करने में समर्थ होकर भी चाणक्य की चंद्रगुप्त के लिए राक्षस की संग्रह करने की इच्छा के अनुरोध से कष्टपूर्वक कुटिल नीति के प्रयोग को ध्वन्यर्थ से दर्शाया है। क्रूर ग्रह सकेतु इत्यादि में श्लेष से दो अर्थों की प्रतीति में अद्भुत रचना कौशल दिखलाया है। अधिक क्या लिखे, स्थान स्थान पर इस नाटक में संधि विग्रह आदि राजनीति के गुणों के अद्भुत प्रयोग प्रदर्शित किए गए हैं। इसकी विशेषता पूर्ण रूप से दिखलाने के लिए एक ग्रंथ ही लिखा जा सकता है। मुद्रा राक्षस अलंकारों से अलंकृत है और तत्त्व रसों के आस्वाद का विषय है। इसकी शब्दावली रस के अनुकूल और भावों की निरतिशय गंभीरता वर्णनीय है। इसके पात्रों के चरित्र की विचित्रता, उसमें भी राक्षस की स्वामी भक्ति, चंद्रगुप्त का आचार्य चाणक्य में श्रद्धातिशय, चाणक्य की लोकातिशायनी विलक्षण कूटनीति, चंदन दास की पत्नी की उत्कृष्ट प्रतिभक्ति एवं राक्षस का अपने मित्र चंदन दास की रक्षा के लिए अपने प्राण और प्राणों की भी परवाह न करना, अंत में साम्राज्य धुरंधर निरतिशय शक्तिशाली चाणक्य का विशाल प्रसाद में न रहकर जीर्ण झोपड़े में रहना, ऐसी अद्भुत सादगी है जो कि निम्नस्थ पद्य में प्रदर्शित है। उपल शकल मेतद भेदकम गोमयानाम बटुभि रूपहृतानाम बर्हिषाम स्तूप मेतद शरणमपि समिद्धि शुष्यमाणाभिराभि विनिर्मित पटलांतम दृश्यते जीर्ण कोड्यम। 3.15। अंत में चंदन दास के लिए आत्मसमर्पण करने में विवश राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाकर सब कुछ छोड़कर तपोवन के लिए चाणक्य का प्रस्थान, आर्य संस्कृति के अभिमानी किस पुरुष के हृदय में ब्राह्मण की त्याग पराकाष्ठा की अद्भुत छाप अंकित नहीं करता है। मुद्रा से राक्षस का परिग्रह करने से प्रकृत नाटक का मुद्रा राक्षस नाम अनवर्थक है। अब मुद्रा राक्षस की संक्षिप्त कथा लिखते हैं। प्रथम अंक में आचार्य चाणक्य नीति विमर्श पूर्वक अपने गुप्तचरों से विरोधियों के कार्यकलाप का श्रवण करते हैं। द्वितीय अंक में राक्षस का अपने गुप्तचरों के साथ संवाद और वे अपनी नीति की विफलता सुनते हैं। तृतीय अंक में चाणक्य चंद्रगुप्त प्रवर्तित कौमुदी महोत्सव का निवारण करते हैं और चंद्रगुप्त के साथ कृत्रिम बनावटी मनमुटाव प्रदर्शित करते हैं। चतुर्थ अंक में गुप्तचर के मुख से कुसुमपुर का वृत्तांत सुनकर अपने पराभव से राक्षस का विषाद और उनका पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु के साथ कार्य परामर्श का वर्णन है। पंचम अंक में चाणक्य की कूटनीति से मलय केतु राक्षस को शत्रु पक्षस्थ समझकर अपने पक्ष से निष्कासित करता है। षष्ठ अंक में अपने मित्र चंदन दास को राजद्रोह के अपराध में सूली देने की बात सुनकर राक्षस का विषाद और उसको छुड़ाने के लिए उनका आत्मसमर्पण करने का विचार वर्णित है। सप्तम अंक में राक्षस का आत्मसमर्पण करना, चंदन दास का बंधन से विमोचन और राक्षस के चंद्रगुप्त के मंत्री पद स्वीकार करने का वर्णन है। मुद्रा राक्षस में नायकादि वर्णन। मौर्य चंद्रगुप्त धीर ललित नायक है, मलय केतु प्रति नायक है। ये दो नाटक के आलंबन विभाव हैं। जय प्राप्ति के लिए उनका कार्य का अनुष्ठान उद्दीपन विभाव, जय प्राप्ति के लिए उपाय चिंता आदि अनुभाव हैं। वीर रस अंगी प्रधान है, करुणा और अद्भुत आदि रस अंग अप्रधान है। चाणक्य और राक्षस नायक और प्रति नायक के सहायक हैं। रीति गौड़ी प्रधान गुण ओज है। पदानी त्वद गतार्थानी इत्यादि लक्षण वाली प्रस्तावना का नाम उद्घात्यक है। होलिकोत्सव संवत 2039 ब्रह्मा घाट वाराणसी। विद्वत विधेय शेषराज शर्मा रेग्मी।